थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। तो श्रोताओ, आज से हम यहूदा नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जो पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में पाई जाती है। इसका मुख्य विषय है विश्वास के लिए संघर्ष और इसके लेखक स्वयं यहूदा हैं, जो गलत शिक्षा का विरोध करते हैं। जी हाँ, ये पत्री झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए लिखी गई है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। हम पापी थे, पापी मजदूरी मृत्यु थी, पर यीशु की कृपा से जीवन प्रदान की। कैसा महान प्रेम उसने हम पर किया, हम उसको दे धन्यवाद। जीवन मिली मसीह दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। अब जो मसीह ने उस पर दंड नहीं है, मसीह के लहू से सब माफ किया है। मसीह के राह पर हम चलते रहे, किया है हमको आजाद। जीवन मिली मसीह हम उसको दे धन्यवाद। पाप के अंधेरे से वह निकाल कर दिया है जीवन नया। जीवन मिली मसीह यीशु में नया, हम उसको दे धन्यवाद। हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हालेलुया, हा 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 हालेलुया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करते हुए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यहूदा के पत्र से अपने अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले अध्ययन में हम सबों ने पुराने नियम की पुस्तक और उसके सपन्याह की पुस्तक से अध्ययन किया। आज हम नए नियम में प्रवेश करते हुए यहूदा की पत्री से अध्ययन करेंगे। इसमें हम आज उसके प्रस्तावना और एक पद को देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी कि पिछले दिनों में आपने हमें पुराने नियम की पुस्तक से अध्ययन करने में सहायता की। आज हम नए नियम की पुस्तक में से यहूदा की पत्री से अध्ययन को आरंभ करते हैं। तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हम आपके वचन के गहरेपन को समझकर उसके अनुसार चल सकें। हर एक प्रकार की बुराइयों से, शैतान के छल प्रपंच से आप हम सबों की रक्षा करें। आज अपने वचन के द्वारा आप हम सब से बोले, बातचीत करें और आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहूदा की पत्री इसमें मात्र एक अध्याय है। यहूदा की इस छोटी पत्री का अध्ययन ऐसा है जैसा सोने की खदान में काम करना, क्योंकि यहां खोजने हेतु बहुत से नगीने हैं। इसका लेखक यहूदा है, जो यूनानी में यूदास कहलाता है। वह स्वयं कहता है कि वह प्रभु यीशु का भाई है। सुसमाचार वृतांतों में 3 वरन 4 याकूब हैं और 3 यहूदा हैं। हमें लेखक की पहचान करने में मत्तीरचि सुसमाचार 13 अध्याय उसका 55 पद से सहायता मिलेगी। लिखा है, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमोन और यहूदा नहीं? इनमें से यीशु के 2 भाई याकूब और यहूदा हैं। जी हां, याकूब की पत्री और यहूदा की पत्री के लेखक हैं, वे दोनों ही लेखक हैं। यहूदा नाम के 2 पुरुष और थे जो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से थे। सर्वप्रसिद्ध यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया, और दूसरा यहूदा, जिसके विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 22 पद में लिखा है, उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? मेरे प्रियो, यहां पर स्पष्ट किया गया है कि यह यहूदा यहूदा इस्करियोती नहीं है। अतः हम यह मानते हैं कि इस पत्री का लेखक तीसरा यहूदा है, जो प्रभु यीशु का भाई था। ध्यान दे कि याकूब और यहूदा दोनों ही अपने को प्रभु यीशु का भाई नहीं कहते हैं। याकूब कहता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में, परमेश्वर के और यीशु मसीह के दास याकूब। और यहूदा अपने को कहता है, यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। यहूदा अपने को प्रभु यीशु का बंधुआ दास कहता है। याकूब और यहूदा ने यीशु के साथ अपने खून के रिश्ते का सहारा क्यों नहीं लिया? मेरे विचार में इसका कारण स्पष्ट है। न तो याकूब और न यहूदा ने यीशु के पुनरुत्थान तक उस पर विश्वास नहीं किया था। कि वह परमेश्वर का मसीह है। यीशु के पुनरुत्थान ने ही उन्हें विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में मसीह था, जैसा उसने कहा था। तब तक वे यही सोचते थे कि यीशु अपनी धार्मिक आस्थाओं से भटक रहा था, जैसा कि उसके लिए सुसमाचार में उन्हें शक हुआ कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं। देखिए यह कैसी विडंबना है कि यीशु के साथ रहकर एक ही परिवार में पलकर उन्होंने प्रभु यीशु को नहीं पहचाना। मेरी समझ में भजन संहिता 69 में उसी के बारे में व्यक्त किया गया है कि जब वह नासरत में बड़ा हो रहा था तब उसे अकेलेपन का बोध हो रहा था और वह गलत समझा जाता था। इसी बात को आगे चलकर पौलुस ने व्यक्त किया है 2 कुरिन्थियों की पत्री 5:16 में। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मेरे प्रियो, यहूदा यद्यपि प्रभु यीशु का भाई था, उसने यह जान लिया था कि प्रभु यीशु महिमा निमित्त मसीह है और मानवीय संबंध उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। उसे प्रभु यीशु को किसी भी मनुष्य के समान अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। प्रसंगवश यह एक अति उत्तम उत्तर है जो याकूब और यूहन्ना देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के परिवार को आरंभ के एक समय अंधविश्वास के साथ श्रद्धा चढ़ाई जाती थी। वे भी हमारी ही तरह साधारण मनुष्य थे जिन्हें प्रभु यीशु के निकट आने की आवश्यकता थी। मेरे प्रियो, मैं सदैव यही सोचता हूं कि हम मरियम को उसके योग्य मान प्रदान नहीं करते हैं। वह संयोगवश प्रभु यीशु की माता नहीं बनी तो क्या हम उसे आदर देते? परमेश्वर ने उसे चुना था, परंतु हम उसे प्रेरितों से बड़ा ना माने। उसका अपना स्थान है। एलिशबा ने उसे स्त्रियों में धन्य कहा था, स्त्रियों से बढ़कर नहीं। लुकार्ची सुसमाचार 1:47 में मरियम ने स्वयं उद्धारकर्ता की अपनी आवश्यकता को व्यक्त की है। अतः वह अंतराल जब प्रभु यीशु के परिवार को अलौकिक बनाया जा रहा था, उस समय यह याकूब और यूहन्ना का प्रतिवाद है। उन्होंने अपने को प्रभु यीशु का बंधुआ दास कहा। मेरे प्रियो, इस पुस्तक का लेखन काल 66 से लेकर के 69 है। इस पुस्तक का विषय विधर्म के समय विश्वासियों का आश्वासन है। यहूदा के आत्मा से प्रेरित होकर सुसमाचार और हमारे उद्धार से संबंधित सत्य के कुछ विषयों पर मार्गदर्शन के शब्द लिखे हैं। वह विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने के विषय पर भी चर्चा कर सकता था, परंतु पौलुस ने इस विषय पर पहले ही रोम के विश्वासियों को लिख दिया था। वह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विषय में भी लिख सकता था, परंतु इस विषय में भी पौलुस कुरिन्थ नगर के विश्वासियों को अपनी पहली पत्री में लिख चुका था। परमेश्वर के साथ शांति बनाए रखने की शिक्षा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को दूसरी पत्री में लिख चुका था। विश्वास के लिए पौलुस ने गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को अपने पत्र में समझाया था। कलीसिया मसीह की देह है। इस पर भी पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा था और कुलुसे की कलीसिया को पत्र लिखते समय पौलुस ने मसीह के मनुष्यत्व के विषय चर्चा की थी। यहूदा को मसीह के महायाजक होने के विषय भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में इस पर सविस्तार चर्चा की गई है। मेरे प्रियो, जहां तक कलीसिया में सहभागिता का प्रश्न था, परमेश्वर की आत्मा ने यह उत्तरदायित्व यहूना को सौंपा था कि वह कलीसिया को समझाए। अतः पवित्र आत्मा ने यहूदा को एक भावी चिंता का विषय दिया। जी हां, कलीसिया में आने वाले धर्म भ्रष्ट करने वाली शिक्षाएं। यहूदा हमें इसका विविध एवं सटीक विवरण सुनाता है। वह मसीह की कलीसिया की यात्रा में आने वाले खतरनाक मोड़ पर लाल बत्ती को चमकाता है। अतः यह पत्री एक प्रचार से चोरी की घंटी है। विधर्मी कलीसिया में चुपचाप से घुस आए थे। यह छोटा सा पत्र एक परमाणु बम की तरह है जो आरंभिक कलीसिया में चेतावनी स्वरूप फटा था। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में एकमात्र यही पत्री है जो मूसा की लोथ पर शैतान और मिकाएल स्वर्गदूत के विवाद की चर्चा करती है। एनोश की भविष्यवाणी भी धर्मशास्त्र में अन्य किसी स्थान में नहीं है। वह प्रभु को 10,000 पवित्र जनों के साथ आते देखता है। यहूदा की भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिए एक अति उचित प्रस्तावना है। तो आइए हम देखें कि यहूदा की पत्री से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पत्री का समय और कारण। आरंभिक 3 पदों में यहूदा इस पत्री के लिखने का कारण प्रकट करता है। वह कहता है कि वह उद्धार के विषय में लिखना चाहता था, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उसे रोका और प्रेरित किया कि वह आने वाले समय में कलीसिया को विधर्म के विरुद्ध सतर्क करे। हम देखते हैं विश्वासियों को आश्वासन। आइए हम पढ़ें यहूदा की पत्री उसके 1 अध्याय के 1 पद। लिखा है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। लिखा है यहूदा। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि नए नियम में यहूदा नाम के 3 व्यक्ति हैं, परंतु हमारे पास स्पष्ट प्रमाण है कि यह यहूदा प्रभु यीशु का भाई था। वह कहता है यीशु मसीह का दास। यहां दास का अर्थ है बंधुआ दास। वह प्रभु यीशु से अपना संबंध नहीं दर्शाता है, क्योंकि इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, जो प्रेरितों के बाद कलीसिया में छा गया था कि प्रभु यीशु के परिवार को अलौकिक श्रद्धा प्रदान की जाए। डॉक्टर मर्विन आर विंसेंट कहते हैं, यहूदा अपना संबंध प्रभु यीशु से नहीं जोड़ता है, क्योंकि वह बताना चाहता है कि लौकिक से बढ़कर आत्मिक है। आप देखें लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 27 और 28 पद को। तब हम देखते हैं कि डीन अल्फोर्ड कहते हैं कि यदि वह ऐसा करता तो आने वाली पीढ़ियों के अंधविश्वास के साथ जुड़ जाता। इसलिए आगे वह कहता है याकूब का भाई। जैसा हम प्रस्तावना में देख चुके हैं कि याकूब और यहूदा दोनों प्रभु यीशु के भाई थे। याकूब की पत्री का लेखक है, जिसे पौलुस यरूशलेम की कलीसिया का स्तंभ कहता है। तब यहां लिखा हुआ है उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय। परमेश्वर पिता में प्रिय हमारे लिए अधिक मूल्यवान है। जी हां, मैं आपके साथ केनेथ एस व्यूस्ट का अनुवाद बांटना चाहता हूं, जिसमें यहूदा के कहने का अभिप्राय अधिक स्पष्ट होता है। यहूदा मसीह यीशु का बंधुआ दास और याकूब के भाई की ओर से परमेश्वर द्वारा प्रेम किए हुओं और उसके सर्वदा के प्रेम पात्रों के नाम जो प्रभु यीशु के लिए सुरक्षित किए गए हैं और सतर्क निगरानी के अधीन सर्वदा रहते हैं। मेरे मित्रों, यह धर्मशास्त्र का एक अति महान पद है। हमें पिता परमेश्वर प्रेम करता है और हम मसीह यीशु के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। इस लेख में मैं अनेक शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि वे अति महत्वपूर्ण हैं। जी हां, पहला शब्द है सुरक्षित। यह शब्द यहूदा की पत्री की कुंजी है और विधर्म को ऐसा प्रस्तुत करता है जैसा धर्मशास्त्र में और कहीं नहीं है। यह भयानक तो है, परंतु यहूदा का उद्देश्य हमें डराने का नहीं है और न ही वह हमें मात्र जानकारी देना चाहता है। वह हमें इसलिए बताता है कि हम आने वाले विधर्म के समय सावधान रहें। जी हां, वह सुरक्षित शब्द का उपयोग 4 बार करता है। मसीह के लिए सुरक्षित, परमेश्वर ही है जो उन्हें सुरक्षित रखे हुए था। पद 21 में देखें, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। और पद 24 में वह कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, आप कुछ भी सोचें, पर इससे विश्वासी को विधर्म के समय ढाढ़स मिलता है। आज हम विधर्म के युग में हैं, जो प्रभु यीशु के आगमन तक कितना बढ़ेगा हम नहीं जानते, परंतु यह निश्चय ही विधर्म का समय है। मेरे प्रियो, जहां तक भोजन वस्तुओं को सुरक्षित रखते हैं या रखने की बात है, वे सिरके में या चीनी में सुरक्षित रखी जाती है। इसी प्रकार अनेक पवित्र जन भी सिरके जैसी सुरक्षा में हैं, अर्थात उनका आचार विचार ऐसा ही है, परंतु कुछ पवित्र जन चीनी में सुरक्षित हैं। सिरके से सुरक्षित पवित्र जन भी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 पद में यूहन्ना कहता है, वे मेमने के लहू के कारण उस पर अर्थात शैतान पर जयवंत हुए हैं। महाक्लेश में विश्वासियों के जीतने की यही एक नीति होगी, मेमने के लहू के द्वारा। जी हां, हम में तो शैतान पर जय पाने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु परमेश्वर में होकर हम जय पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 11 पद में प्रभु ईश्वर ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और अपनी भेड़ों के लिए वह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 से 29 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यदि भेड़ सुरक्षित है तो वह उसकी अपने क्षमता से नहीं, भेड़ में आत्मरक्षा का सामर्थ्य नहीं होता है। उनके न तो नुकीली दांत होते हैं और ना ही पंजे, वह तो भाग भी नहीं सकती है, खरगोश तक भागकर छिप जाता है। भेड़ तो पूरी तरह असहाय होती है, अतः भेड़ अपनी सुरक्षा का श्रेय चरवाहे को देती है। मेरे मित्रों, यदि आपको अपने उद्धार का आश्वासन नहीं है तो आप अपने चरवाहे पर संदेह कर रहे हैं। उसने कहा है कि आपको परमेश्वर पिता से कोई नहीं छीन सकता, आप उसे थामते नहीं हैं, वह आपको थामता है। यहां बात आती है आपके विश्वास की। जी हां, उद्धार परमेश्वर के वचन पर आधारित है। आपका उद्धार निश्चित है, यह तो आपके ऊपर है कि आप विश्वास करें या ना करें। यहूदा में विधर्म के अंधकार की चर्चा की गई है और परमेश्वर कहता है कि वह आपको सुरक्षित रखने में सामर्थी है। इसीलिए लिखा हुआ है, बुलाए हुओं के नाम। हम प्रभु यीशु में सुरक्षित ही नहीं, हम बुलाए हुए भी हैं। धर्मशास्त्र में बुलाए शब्द का अर्थ आमंत्रित से नहीं है। इसका अर्थ है जिन्हें प्रभु ने पुकारा और वे चले आए, तथा पवित्र आत्मा ने उसे यथार्थ रूप प्रदान किया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1:22-24 पद में पौलुस कहता है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। मेरे मित्रों, यदि आपने प्रभु यीशु में परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ पाया है, तो आप बुलाए हुओं में से एक हैं। यदि आप उसके निमंत्रण को ग्रहण करके विश्वास करते हैं, तो आप भी बुलाए हुए हैं। यहूदा यही कहना चाहता है और पौलुस ने भी हमें यही समझाया है। मेरे मित्रों, आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के द्वारा उस निमंत्रण को स्वीकार करें। हम इधर उधर ना ताकें, परंतु सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए उसकी ओर निहारें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को ढूंढोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कहने का अर्थ है कि आपको सत्य ही स्वतंत्र कर सकता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आज आप स्वतंत्र हैं या अभी तक बंधे हुए हैं? मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि यहूदा की पत्री हम सबके जीवन के लिए अवश्य ही आशीष का पात्र होगा। यहां तक हम देखेंगे कि किस प्रकार यहूदा हमें झूठे शिक्षकों से सुरक्षित रहने की बातें बताता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और सहायता करे कि हम इसमें और भी ज्ञान की बातों को सीख सकें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
का नाम ले चलो, यीशु का साथ।